एक स्त्री मुक्ति की चुनौतियां और परिवार। छठे सातवें दशक के कथा साहित्य में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर काफी गहमा गहमी थी। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा हो या मनु भंडारी, सबने परिवार और रिश्तों में आए बदलाव, तनाव और टूटन को रेखांकित किया है। खास तौर से स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण करते हुए सामाजिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन ही नहीं किया गया, कथाकृतियों के बहाने नए यथार्थ का समाजशास्त्र भी प्रस्तुत किया गया। यशस्वी कथा लेखिका मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी इसी रूप में महत्वपूर्ण है। उपनिवेश भारत को मिली आज़ादी, संवैधानिक परिवर्तन, राजनीतिक और आर्थिक तब्दीलियाँ, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि के माध्यम से व्यक्ति चेतना का भी उदय होता है। नारीवादी विचारकों, लेखकों, लेखिकाओं की भूमिका भी इस दिशा में असंदिग्ध रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री में वैयक्तिक स्वतंत्रता की बलौती इच्छा जागृत होती है। फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम पर्स सीमांत बोगार के इस वैचारिक आलोक में यह कहना उचित होगा कि स्वावलंबी स्त्री में अस्मिता तथा अस्तित्व संपन्न होने का गौरव भाव भी जागृत होता है, परंतु पति पुरुष उसे सह नहीं पाता। तब प्रारंभ होता है गृह कलह, जिससे परिवार का ही नहीं व्यक्तित्व का भी विघटन होता है। वस्तुतः नारी मुक्ति के प्रश्न सामाजिक पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में ही उठाए जा सकते हैं, अतः विभिन्न इकाइयों में परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तनों की गतिशीलता में ही स्त्री मुक्ति संभव हो सकती है। धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक किस्तों में प्रकाशित आपका बंटी पुस्तकाकार रूप में 1971 में प्रकाशित हुआ था। बदलते रिश्तों की जटिलता की सहज अभिव्यक्ति के कारण इसकी पठनीयता में लगातार वृद्धि होती गई। लगभग 35 वर्षों के उपरांत प्रस्तुत पुस्तक की समीक्षा करते हुए मन मस्तिष्क में यह सवाल उठता है कि औपन्यासिक यक्ष प्रश्न क्या आज के समाज में पूर्ववत नहीं गूंज रहे हैं। औपन्यासिक विषय वस्तु तलाक और तलाक के बाद माता पिता के संयुक्त प्यार और जिम्मेदारी से वंचित संतान की करुण चित्कार समाज में नहीं ध्वनित हो रही है। वस्तुस्थिति यही है कि तलाक या संबंध विच्छेद की समस्या दिनों दिन बढ़ी है। वैयक्तिकता और आर्थिक दबावों के तहत संयुक्त परिवार टूटे हैं। पारिवारिक अवधारणा बदली है। पति पत्नी और संतान की सामूहिकता ही परिवार का पर्याय बना। फिर नारी मुक्ति के सवालों और सह अस्तित्व की दरकार से एकल परिवार भी टूटने लगे। अहम मन्यता और वर्चस्वबोध से ग्रसित पति के साथ अहंनिष्ठ पत्नी की तकरार शुरू होती है और उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। विवाह संस्था की इस मान्यता में पेच पड़ जाता है कि पति पत्नी जीवन पर्यंत के साथी होते हैं। यह सामान्य सी लगती घटना तब अधिक भयावह हो जाती है जब उनके बीच संतान होती है। शकुन और अजय के बेटे बंटी के माध्यम से कथा लेखिका इसी भयानक समस्या को उपन्यास का कथावस्तु बनाती हैं। दोष किसका है और निदान क्या हो, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है, अपितु अन्य सवालों के गुच्छे भी हैं। बदलते रिश्ते, स्त्री पुरुष के अंतर्द्वंद्व, संबंधों से उपजती दरारें, अहं की टकराहट और उखड़ते जमते लोगों का बेबाक विश्लेषण लेखिका ने बेशक किया है, साथ ही मानवीय रिश्तों को बचाए और जिलाए रखने की कोशिश भी उनमें भरपूर है। कपड़ों की तरह बदलते रिश्तों का को परोक्ष रूप से अनचित ठहराती हैं। माता पिता के प्रति उनमें तीखी प्रश्नाकुलता है कि क्या बच्चों के प्रति उनकी उभयात्मक जिम्मेदारी नहीं है। अबोध बच्चों के रहते उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई मायने है क्या। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते जाना यदि पाठक को अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि बंटी का यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। जन्म पत्री बंटी की पृष्ठ संख्या 8। उपन्यास व्यक्ति और परिवार के द्वंद्व और अंतर विरोध को उजागर करता है। परिवार को बनाने और बनाए रखने के लिए छोटी बड़ी कई आकांक्षाओं की बलि देनी होती है, फिर अन्य संस्थाओं को चलाए रखने के लिए भी वैयक्तिकता का निषेध किया जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते किसी भी संस्था में व्यवहारों में सामंजस्य की अपेक्षा की जाती है। तब वैवाहिक संस्था के बांधे पति पत्नी के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि परस्पर सम्मान और सह अस्तित्व का भाव उन्हें स्वीकार्य हो। छोटी छोटी बातों पर तूफान खड़ा नहीं किया जाए। इसलिए यथास्थितवादी फूफी कहती हैं, अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूं छोड़ दिया जाता है? और जब शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने का निर्णय करती है तो वह कहती है, जवानी यूं ही अंधी होती है बहू, फिर बुढ़ापे में उठी जवानी, महासत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं उससे इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। फूफी निश्चित ही लेखिका की प्रवक्ता हैं। संभवतः सामाजिक दुश्चिंताओं से उबर जाने का ही एक रास्ता वह दिखाती हैं। यह रास्ता परंपरागत ही नहीं सर्वमान्य भी रहा है। भविष्य कुष्ठ में बच्चों को स्वस्थ और समुन्नत करने का एक आदर्शात्मक पहलू, ताकि मानसिक विकृतियों, अवसाद, वैयक्तिकता और आपराधिकता का शिकार बच्चे न हो सकें। किंतु लेखिका का यह मंतव्य निर्णायक और आरोपित भी नहीं है। वे तो पारिवारिक त्रिकोण की सभी भुजाओं का आकलन निरपेक्ष रूप से करना चाहती हैं। इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकी समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही है। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजिडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। पृष्ठ 7। लेखिका का सारा संकट परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का है, व्यक्ति और परिवार के अंतर्विरोध का है, और है स्त्री पुरुष संबंधों में उग आए झाड़ों को उखाड़ फेंकने की मानवीय विकलता। किंतु नए चिंतन और नए सरोकारों को भी झुठलाना और अनदेखा करना लेखिका के वश में नहीं है। वस्तुतः उपन्यासकार नारीवादी सोच तथा परिवार और समाज पर उनके पड़ते प्रभाव और परिवर्तन का विश्लेषण करती हैं। उपन्यास में शकुन क्रियावादी नहीं प्रतिक्रियावादी है। यह आंतरिक कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी नहीं है। मुद्दा करियर का हो या पुनर्विवाह का, मसलन 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था, और जैसे उसका मुकाबला करते करते उससे जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई थी। पृष्ठ संख्या 36। उपन्यास में अहं का जैसा टकराव और रस्साकशी वर्णित है, वैसा ही प्रसंग राजेंद्र यादव की कहानी टूटना में है। ससुर के द्वारा किए गए अपमान से तिलमिलाता नायक किशोर प्रतिद्वंदिता में ही लगातार उन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, परंतु प्रश्न यह है कि पति पत्नी का संबंध तो प्रेम और विश्वास का होता है, उनमें सहकर्मियों जैसी खींचतान की होड़ कहाँ होती है। शकुन और अजय का कार्यक्षेत्र भी एक नहीं था। फिर शकुन की यह प्रतिद्वंदिता विषयगत सोच नहीं, विषयीगत सोच ही लगता है। अति बौद्धिकता भी कारण हो सकती है। समाज में स्त्री की सामाजिक हैसियत या पहचान पद के पद या प्रतिष्ठा के अनुसार होती रही है। इसीलिए आज की तारीख में भी कोई स्त्री, भले ही वह स्वावलंबी हो, नहीं चाहती कि उसके पद की सामाजिक हैसियत उससे कमतर हो। कारण परंपरागत संस्कार भी हो सकता है। फिर शकुन का इतना प्रतिक्रियावादी होना दोनों का अहंगवादी होना ही लगता है। शकुन के वैवाहिक जीवन अजय के साथ कुष्ठ की बुनियाद में ही संतुलन का अभाव रहा होगा। दो भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के वैवाहिक समारंभ का समापन निश्चित ही तलाक पर होगा। वैसे लेखिका के ने उन संदर्भों कुष्ठ में अपमान और विश्वास का उल्लेख नहीं किया है जिससे शकुन की प्रतिद्वंदिता को औचित्य प्रदान किया जा सके। वैवाहिक जीवन की असहजता और असफलता का बयान जरूर है। इन्वर्टेड कामा 10 वर्ष का विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। तलाक से मिली मुक्ति से भी आगे प्रकाश नहीं। इन्वर्टेड कामा बंद पृष्ठ संख्या 37। जीवन को कोरा स्लेट नहीं है कि उस पर लिखे हुए को एकदम साफ कर दिया जाए। यह सच है, बीती घटनाएं या अनुभव हमेशा के लिए आत्मा में गढ़ जाते हैं, शरीर मन पर अपना निशान छोड़ जाते हैं। शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह भी अजय की प्रतिक्रिया में ही करती है, और वह भी अजय के वकील मित्र की सलाह पर। तुम केवल बंटी की माँ की तरह ही मत जियो, शकुन की तरह भी जियो। पृष्ठ संख्या 41। शकुन माने स्त्री, एक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में खुशियों का आकांक्षी होता है। खुशियां जीवन को भराव देती हैं। इसी प्रत्याशा में शकुन 2 बच्चों के पिता विधुर डॉक्टर जोशी से विवाह करती है। अपने लोग और अपने घर की भावनात्मक अनुभूति के लिए आत्मनिर्भर, कोष्ठ में सिर्फ आर्थिक स्तर। शकुन डॉक्टर जोशी के घर आ जाती है बेटे के साथ, अपना घर, कोष्ठ में कॉलेज कैंपस का ही सही, बाग बगीचा सब कुछ छोड़कर। जाहिर है मानसिक निर्भरता आधुनिक स्त्री की भी बनी हुई है। सामाजिक पारिवारिक मान्यताओं और विश्वास में ही वह जीना चाहती है, मगर गुलाम बनकर नहीं, सह अस्तित्व की अपेक्षा करते हुए। कठिनाई सिर्फ उसे बंटी को लेकर होती है। बंटी न तो जोशी के घर को अपना घर समझ पाया और न ही उन्हें पापा कह सका। घर के एक कोने पर भी वह अपना अधिकार न जता पाता। वह ऐसा पौधा है जो कॉलेज कैंपस के घर से उखाड़ा गया तो फिर कहीं जड़ नहीं पकड़ सका, मुरझाता ही चला गया। उसका बचपन, उसका दुलार प्यार सब छिन बट गया जाता है। डॉक्टर जोशी के घर में रहने वाली शकुन उसकी मम्मी नहीं रह जाती, और कलकत्ता में पापा के घर में अन्य की उपस्थिति के कारण वह गुमसुम हो जाता है। वस्तुतः शकुन न तो अभय की पत्नी बनकर रह सकी और न ही बंटी की माँ। वह माँ तो कतई नहीं जो हर हाल में बच्चों की परवरिश के लिए अपने को उत्सर्ग करती है। वह तो पत्नी और माँ की गौरवपूर्ण धारणाओं को खंडित करती है। वह शकुन बनकर जीने की कोशिश करती है। उसकी प्राथमिकता में स्वजीवन होता है, त्यागमयी माँ की प्रतिमूर्ति नहीं। हालांकि उसका व्यक्तित्व विभाजित लगता है। जो शकुन अजय के लिए स्वतंत्र और डोमिनेटिंग थी, वह डॉक्टर जोशी के प्रति एकदम समर्पित और आश्रित लगती है। प्राचार्या शकुन डॉक्टर पर इस कदर निर्भर करने लगी है कि लगता है एक कदम भी डॉक्टर के बिना नहीं चल सकेगी। औरत कहीं भी, इन्वर्टेड कामा में, औरत कहीं की कहीं पहुंच जाए, फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना जरूरी है, पर वह साथ हो सही अर्थों में। पृष्ठ संख्या 106। एक पुरुष कथा लेखक और एक महिला कथाकार की दृष्टि में क्या अंतर है, इसे तत्कालीन लेखकों के औपन्यासिक दृष्टि को समझकर उनके बीच के अंतराल को समझा जा सकता है। राजेंद्र यादव अपने उपन्यास उखड़े हुए लोग में विवाह संस्था का विरोध करते हैं। उसी समय मनु जी विवाह संस्था ही नहीं, पुरुष निर्भरता की भी वकालत करती हैं। इन्वर्टेड कामा, कोई ऐसा हो जो हर समस्या और परेशानी को अपने ऊपर ओढ़ उसे मुक्त और निर्द्वंद कर सके। इन्वर्टेड कामा बंद। शकुन ऐसी औरत है जो आजादी का ककहरा पढ़कर घर की दहलीज लांघ कर निकल तो पड़ी, परंतु आजादी कोष्ठ में नहीं रहा कि चुनौतियां आगे मिलने पर घबरा जाती है और ऐसे कंधे की तलाश करती है जो उसके बोझ को ढो सके। परंतु प्रश्न यह है कि पति बदल देने से उसका वजूद एक व्यक्ति का बना रहेगा? विवाह संस्था के भीतर क्या डॉक्टर जोशी उस पर अपना वर्चस्व कायम नहीं रखते? बंटी क्यों महसूस करता है कि मम्मी डॉक्टर जोशी की उपस्थिति में सहमी सहमी रहती है? वस्तुतः शकुन का व्यक्तित्व परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्वात्मक सूत्रों से गढ़ा गया है। सामाजिक पारिवारिक संरचना की कुछ बनावट ही ऐसी है कि स्त्री की आजादी का हर चरण उसे दंश भी देता है। शकुन के साथ भी ऐसा ही होता है। अजय उससे अलग रहकर मीरा से विवाह करता है, दोबारा एक बच्चे का बाप बनता है। उसके भीतर कोई वैक्यूम नहीं बनता। किंतु शकुन अजय से मुक्त होने पर परित्यक्ता होने की चुभन सहती है, अकेलेपन की पीड़ा सहती है। अकेलेपन की भावनात्मक असुरक्षा के कारण ही वह हर रोज बंटी को कहानियां सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और जो अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। पृष्ठ संख्या 14। बंटी के लिए मम्मी की ही सब कुछ होती है, पापा से तो वह साल 6 महीने पर ही मिलता है, उनसे गिफ्ट की उसे लालसा होती है, लेकिन रात में उनके साथ नहीं रह सकता, माँ के लिए रोने लगता है। लेकिन ऐसा बच्चा भी मिसेज जोशी के लिए अनावश्यक प्रसंग या अनावश्यक तत्व बन जाता है। मम्मी पर एकल अधिकार जताने पर वह मम्मी की दुनिया, नई दुनिया का बाधा बन जाता है, गरिमापूर्ण मातृत्व का पद खंड खंड हो जाता है। इस नई समस्या को लेकर लेखिका चिंताग्रस्त हैं। इन्वर्टेड कॉमा, स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाओं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ का क्या होगा? क्या सचमुच यह कहानी सोनल रानी की भी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने बेटे को खा जाती है? इन्वर्टेड कॉमा बंद। पृष्ठ संख्या 7, जन्मपत्री बंटी की। वस्तुतः आपका बंटी कोष्ठ में औपन्यासिक नामकरण एक गंभीर समस्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से ही मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? उपन्यास पाठ की संवेदना को कुरेदता है, इंसानियत को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश करता है, इसीलिए संवेदना के केंद्र में बंटी ही है। विचित्र परिस्थितियों में वही करुणा और सहानुभूति का केंद्र है। हॉस्टल एक वैकल्पिक आवास हो सकता है, किंतु मनुष्य का अंतर जगत भौतिकता से कभी परिपूर्ण नहीं होता। मानवीय उष्मा के अभाव से उसमें हाहाकार ही होता रहता है। बंटी का बचपन छीन लिया जाता है, फिर उसके आगे की जिंदगी में भला सामरस्य कैसे रह सकता है? उपन्यास इन्हीं मानवीय चिंताओं और मनोवैज्ञानिक विवेचन के कारण विशिष्ट है। बच्चे भविष्य होते हैं, बचपन अनमोल होता है। बच्चे की चिंता भविष्य की चिंता होती है। अगर बचपन ही हाशिए पर हो तो स्त्री पुरुष संघर्ष के कारणों के लिए चिंतित होना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। जाहिर है मनु की चिंता में साहित्यकार के सामाजिक दायित्व बोध का ज्ञान होता है। स्त्री मुक्ति के मुद्दे पर उनकी दृष्टि इकहरी नहीं, परिवार व समाज सापेक्ष है। वैसे भी बचपन का खास महत्व होता है एक इंसान के लिए, इसीलिए जिन लेखकों का बचपन संकटग्रस्त रहा है उनकी लेखनी में वह बचपन बार बार आता है। वे चार्ल्स डिकेंस हों, हेनरी जेम्स हों या मैक्सिम गोर्की, बचपन की अवस्थित से ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निर्मित होता है। प्रेमचंद की कहानियों ईदगाह और दो बैलों की जोड़ी में बचपन ही निरूपित हुआ है, किंतु नारी मुक्ति की अवधारणा व परिवार की अवधारणा में जो गहन अंतर्विरोध है, सामंजस्य की दिक्कतें हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति उपन्यास में बंटी के माध्यम से हुई है। माता पिता के सहज संबंध न होने या अलगाव की स्थिति में बच्चे का कोमल मन प्रताड़ित होता है। तत्कालीन समय के हिसाब से औपन्यासिक विषय वस्तु लगभग नया क्षेत्र है पाठकों के लिए। तलाक विदेशों में अधिक होते हैं, पर स्वदेश भी इस समस्या से जूझ रहा है। इस प्रकार उपन्यास के बहुपठित और बहुचर्चित होने के कारण विषय की तलखी तो है, लेखिका की सहज अभिव्यक्ति का कला कौशल भी प्रभावित करता है। इसी उपन्यास से मन्नू भंडारी की विशिष्ट पहचान होती है और यह रचना स्त्री मुक्ति के सवालों के लिए माइलस्टोन बन जाता है।